और शांति 19 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली ज्ञान का मंथन करते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए, एक गूगल मीट का, दूसरा यूट्यूब लाइव। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुविधा है, कोई सुझाव है जो हम सब के हित में हो सकती है, वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता, तो ये भी मन मना भाव, ये भी क्या है, मन मना भाव। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि बने। कल हम क्या थे, पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि। खुशी कब मिलती है हमें, खुशी कब मिलती है हमें, कभी नोट किया इस बात को कि हमें खुशी कब मिलती है?
प्राप्ति होती है जब खुशी मिलती है।
जब प्राप्ति होती है तब खुशी मिलती है, जब तक प्राप्ति नहीं तब तक खुशी भी नहीं। अब कौन सी प्राप्ति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है उतनी खुशी मिलती है। जब हम उसके महत्व को, उसकी वैल्यू को समझते हैं तो खुशी मिलती है। यदि हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते तो हमें उसकी खुशी भी नहीं मिलती। खुशी होती है, खुशी उस बात को जितनी वैल्यू दी जाती है उतनी होती है। एक गरीब पर राजा को दया आई, उसने राजा की हेल्प की थी, राजा ने उसे अपने चंदन के जंगल का एक हिस्सा उसको दिया कि इसका तुम मालिक हो। खुश हुआ कि इतना बड़ा जंगल मुझे मिल गया है। उसने उसको काट काट कर जलाने की लकड़ी के रूप में बेचता रहा। लकड़ियां काटना, जलाना और कुछ बेच के आ जाना ताकि उसका गुजारा चलता। अब खरीदने वाले तो जंगल की लकड़ी समझते थे ना, बेशक वो पहचानते थे परंतु उसकी मूर्खतावश वो केवल उसे जलाने के लिए ही सस्ते में ले लेते थे और वैल्यू अपनी समझते थे। तो उसको कितनी खुशी मिली, खुश था वो कि मुझे जंगल मिला, परंतु उसे ये पता होता ये चंदन की लकड़ी है और ये चंदन कितना खुशी दे सकता है उसने सारा जीवन या जब तक वो जंगल रहा काट काट करके बेचता रहा और खाता रहा। इसी प्रकार से हम भी अपने इस संसार में आए आकर के जीवन को काट रहे हैं। मैक्सिमम दुनिया अपने समय को पास कर रही है। ठीक है, सवेरे उठे, खाया पिया, घुमा फिरा, इधर बैठे उधर बैठे, इधर की और उधर की, शाम को फिर सो गए, अगले दिन गए। पशु वाला जीवन एकदम चल रहा, खुशी कब मिले ज्यादा, जब उसकी वैल्यू को हमें मालूम। इसलिए बाबा कहते मेरी एक एक बात लाख की, लाख टके की एक बात। हम इस एक एक बात को इतना महत्व देकर के सुने, इतना महत्व देकर के समझे, इतना महत्व देकर के उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार, तब हमें उसकी बहुत बहुत खुशी हो सकती। हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते वैल्यू देकर। जैसे उसमें राजा ने उस बात को वैल्यू दिया, पहले सोचो फिर करो, और उसका जीवन भी बचा। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कि हमें पढ़ाता कौन है, ये पहली बात वैल्यू देनी है। वो टीचर जिसके ऊपर कोई टीचर नहीं, जिसने कभी किसी से पढ़ाई नहीं, जिसके ऊपर कोई टीचर नहीं, जो किसी टीचर से पढ़ा नहीं, वो हमें पढ़ाता है। ये बात बैठकर मन मना भाव करें, ये भी मन मना भाव है। यदि ये बात हम अपने आप को समझा रहे हैं तो ये भी हम मन मना भाव कर रहे हैं। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, अब हम ऐसे सुप्रीम टीचर के पास आ गए हैं जो हमको पारस बुद्धि बना रहा। ये बात अपनी बुद्धि को स्वीकार करा रहे हैं तो ये भी मन मना भाव। कितना अच्छी तरह से कराते हैं, ये हमारा मन मना भाव का मतलब करने का तरीका है। और जितनी अच्छी तरह कराएंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर हमारी खुलती किस आधार पर है, कैसे खुल जाती है, क्यों हमें भगवान ने पढ़ाना शुरू कर दिया इतनी बड़ी दुनिया में से, क्यों हमें चुना, क्यों हमारी तकदीर खुली कि हम भगवान से पढ़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि भगवान से पढ़ने का जिसको मौका मिला उसी को तो तकदीर जागी है ना, उसी की तकदीर खुली है ना। ऐसा क्या हुआ कि हम भगवान के पास पढ़ने के लिए बैठ गए?
निश्चय क्या रहा सर भाई?
क्या निश्चय हुआ है आपको?
हम निश्चय हो गए यही भगवान है, यही भगवान है भाई।
ये तो भगवान आप यहाँ आने के बाद हुआ ना, आप आए क्यों यहाँ पर, और सारी दुनिया क्यों नहीं आ रही, आप आ गए हो, बाकी क्यों नहीं आ रहे? निश्चय तो बाद में होगा जब वो आएंगे। हाँ जी, देखिए हाँ, उत्तर कि हमने भक्ति की, उत्तर है यहाँ पर निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। ठीक है, सारे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सारे सुधर जाएंगे, हम भी सुधर जाएंगे, کبھی کبھی بیچ میں کلاس مس بھی کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, باتیں تو وہی ہوتی ہیں, ہمیں یاد رہتا ہے, کیا کرے, پریوار میں سماج میں رہنا پڑتا ہے. نشچے بدھی اچھی ریتی پڑھ کر ڈیولپ کرتے رہیں. کوئی بھی بات میں سنشے ہے تو پیچھے رہ جائیں. کیا نشچے ہو کہ بھگوان ہی ہمیں آ کر پڑھا رہے. جو نشچے بدھی بن اپنی بدھی کو باپ تک دوڑاتے ہیں. باپ تک دوڑانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, باپ کہیں بیٹھا ہے ہم وہاں تک دوڑ کے جائیں, باپ کی اوستھا تک پہنچنے کا پرشارتھ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں باپ سمان بننا ہے. ہم نے باقی کو دوڑ کر کے اس کے پاس نہیں جانا ہے, کہیں وہ بیٹھا نہیں ہے کوئی کرسی ڈال کر کے ہم دوڑ کر جائیں, یا کھڑا ہو انتظار کر رہا ہو کہ وہ سیٹی بچ گئی ہے اب وہ بچے میرے پاس آئیں گے. دوڑنے کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اس کی اوستھا کو پراپت کرنا, جیسے وہ ایک دم نشچنت ہے, ذرا بھی ہلچل میں نہیں آتا. کتنی بڑی باڑ آ جائے, کتنا بڑا طوفان آ جائے, گھر کے گھر برباد ہو جائیں, شہر کے شہر برباد ہو جائیں, آپ کے اندر ساری دنیا جھلس رہی ہو, بابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روک دے بچے, اس کلپ میں رک جا, اس کلپ میں یہ مت کر, بالکل نہیں. ہم نے اس ہائٹ تک پہنچنا, اس اوستھا تک اپنے آپ کو بنانا. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم نے باپ تک جتنا دوڑنا کہا ہے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی باپ سمان بن جائے. یہ دوڑ اپنی بدھی کو, ہم نے شریر کو نہیں دوڑانا کیونکہ ہم شریر ہیں ہی نہیں, ہم تو آتما ہیں, اور آتما کی بدھی کو دوڑاتے. اور جو بدھی کو دوڑاتے ہیں, بدھی میں سدھار لاتے ہیں, من منا بھاؤ زیادہ کرتے ہیں, اچھی طرح سے کرتے ہیں, تو ستو پردھان بن جاتے ہیں. تب تقدیر کھلتی, تقدیر کھلنے کا آدھار ہے ہر ایک آتما کا اپنا پرشارتھ. پرشارتھ کا آدھار ہے نشچے, اور نشچے کا آدھار جو پرماننٹ ہے وہ ہے ہمارے پورے کلپ میں پرماتما سے پراپت کرنے کا, کیا کہتے ہیں, اچھا کہو, بھکتی کہو, چاہت کہو بھگوان سے ملنے کی. کہ کتنی ہماری اونچی چاہت رہی جس کے آدھار پر ہمیں پرماتما آ کر ملے, ہماری بھکتی کا پھل دینے کی ضرورت, کیونکہ آدھار تو ہر ایک کے ساتھ لنک جڑا ہوا ہے. یعنی بھکتی زیادہ نہیں کی ہے تو بابا سے نہیں ملیں گے, اور بابا سے ملیں گے تو نشچے ہوگا, نشچے ہوگا جتنا اچھا نشچے ہوگا اتنا اچھی طرح دوڑیں گے, اور اتنا جلدی ہم ستو پردھان بنیں گے. اوم شانتی. اسٹوڈینٹس سب سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم رہتا ہے کہ ہم کو پڑھ کر کیا بننے کا ہے. میٹھے میٹھے روحانی بچوں کی بدھی میں آنا چاہیے کہ ہم ستیوگ پارس پوری کے مالک بنتے ہیں, اس دیہ کے سمبندھ آدی سب چھوڑ دیں. اب ہم کو پارس پوری کا مالک پارس ناتھ بننا ہے. سارا دن یہ خوشی رہنی چاہیے, समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है, वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते, यहाँ तो पत्थर पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आया तब बनाएगा। तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि से आज पारस बुद्धि बने बन रहे हैं, ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भाव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वे हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए। अभी तक सारी दुनिया पुकार रही है, इंतजार कर रही है कब कल की अवतार होगा, कब कल की अवतार होगा। जो भारत के बाकी भारत में रहने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अब कलयुग का अंतिम समय आ गया है, अब कल की अवतार होना चाहिए। और बाबा ने बड़ा वंडरफुल तरीके से समझाया है कि मैं ही कल की अवतार। मुरली में मैंने इस पर वीडियो बनाया था, एक मुरली में आया था कि मैं ही कल की अवतार। मैंने वो मुरली पढ़ी और तुरंत वीडियो बनाया था कि कल की अवतार हो चुका है। काल की बोलते हैं, कल की बोलते हैं, भाषा कुछ भी हो, बोलने का तरीका कुछ भी हो, ये समझा जाता है। जो हमारे शास्त्रों में उसका चित्र बनाया गया, वो चित्र बनाया गया कि घोड़े पर तलवार लिए हुए एक आता है और कलयुग के अंत में उसे कल की अवतार कहा जाता है। कहाँ पैदा होता है ये पता नहीं, परंतु उसके लिए संभल में मतलब शास्त्रों में जो जिक्र है वो संभल का जिक्र है, जहाँ मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, जहाँ अपने कांग्रेसी एक बाबा बने हुए हैं, उन्होंने कल्कि अवतार कल्कि का मंदिर बनाया जिसको प्रधानमंत्री ने जाके उद्घाटन भी किया। और प्रधानमंत्री को उस समय समझाया गया कि यह अवतार होने वाला है और ये संभल में होगा, उसके लिए हम ये मंदिर बना रहे हैं। मंदिर पहले बन रहा है, वो बाद में अवतार लेगा। इसका समय से उससे कोई मतलब नहीं है। कल्कि अवतार उन्होंने लिखा कि जब पाप अति पर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान हर युग में अवतार लेता है, उनकी समझ में तो ये आता है ना, हर युग में भगवान अवतार लेता है। कलयुग में जब पाप और भ्रष्टाचार अति पर बढ़ जाएगा, तो जैसे त्रेता में राम ने अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण ने अवतार लिया, सत्युग में विष्णु ने अवतार लिया, और समय समय पर पाप आए तो भगवान ने अवतार लिए। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, और कोई कहता है गिनती नहीं कर सकते। परमात्मा तो कभी भी जहाँ दिल दुख आए वहाँ अवतार लेकर के वहाँ की आत्माओं को दुखों से मुक्त करते। परमात्मा बहुत अवतार लेता है, नरसिंह अवतार है, वह क्या बोलते हैं कूर्म अवतार है, दुनिया भर के अवतार है, मत्स्य अवतार है, मतलब अवतारों की गिनती नहीं कर सकते, तो उनका वह बहुत सारे अवतारों की कहानियां वर्णन की और ऐसी ऐसी कहानियां वर्णन कर रखी है जिनकी हम सुखें। मतलब कहने का मतलब वो एक अवतार है, जैसे कछुए का अवतार है ऐसे ही कालकी का भी अवतार है और वो कलयुग के अंत में होना है। और बाबा कहते मैं हूं, मुरली में बाबा ने कहा मेरा है, मैं हूं कालकी अवतार। मैं आया हूं इस समय आकर सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए, तारने के लिए, और वे यहां आ गए हैं, हमें हमारे पास आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब हर कल्प होता है, हर कल्प परमात्मा आकर हम सबको पढ़ाते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वे है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहां भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना, सब कहते हैं शिव भगवानों बाप, शिव है सभी का बाप। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते, कम पढ़ने वाले कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी सवेरे अमृत वेले योग किया कभी नहीं किया, कभी अपने को बाबा की श्रीमत पर चलाया कभी नहीं चलाया, मतलब ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे चल रहे हैं, सुधर जाएंगे, चिंता मत करो। बाबा ने कहा है अंत में सबने सुधरना, अंत सबका एक साथ होना, कभी जल्दी क्या है अपने आप को मौज कर ले खा पी ले। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे आएंगे, आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते, उनको कहा जाता है जाओ वहां हाथ लगाकर के आना, जो पहले आएगा उसको इनाम मिलेगा। तो यहां भी क्या है, हमने परम धाम तक दौड़ना है, परम धाम जाकर हाथ लगाकर आना। अब परम धाम तो सारे एक साथ जाएंगे, फिर किसको हाथ लगाकर आना है?
भाई जी बाप समान बनना है,
हाँ दौड़ना है हमने बाप समान तक, बाप की हाईएस्ट अवस्था तक, बाप की जितनी हाईएस्ट अवस्था तक हम उस लास्ट सेकंड तक पहुंचेंगे वही हमारा नंबर हो जाएगा, वही हमारी मैरिज हो जाएगी। क्या हम कितना बाप सम्मान करें, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहां समझते हैं, यहां समझते हैं, समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं, लेकिन चढ़ता ही नहीं। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बने, कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं, बात कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते, बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ, अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना, दौड़ी लगानी भगवान से मिलने के लिए, इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं वे मिलेगा कैसे, ये तो किसी को पता नहीं, बेचारे परमात्मा से मिलने के लिए हम भी उनके अंदर थे, मंदिर में जाओ जप करो तप करो पूजा करो पाठ करो, कितने जन्मों में हमने पता नहीं क्या क्या किया होगा, अब याद तो है नहीं ना हमें, समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ, सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है, सूर्यवंशी के बाद फिर चंद्रवंशी, दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा, अब हमें कह रहे हैं बताओ उनको रावण का राज्य शुरू हुआ, रावण का राज्य त्रेता में शुरू हुआ, भारत पतित होने लगा, द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, किस तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग, बीच में किसको रखो संगम युग को, द्वापर से त्रेता से द्वापर होता है उस संगम को नहीं, इस संगम को रखो, रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, किसको भी समझाना तो बहुत सहज है, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का बेहद का, इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना, अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है, इस पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी, अब कहते हैं न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी, दुनिया में नई दिल्ली होती है, गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी, नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है, मनुष्य तो ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू हुआ, कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वे जानना चाहिए ना, एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, तुम कौन हो, रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। अब दुनिया में जितने भी सोशल वर्कर अपने को कहलाते हैं वो सब जिस्मानी सोशल वर्कर, वो जिस्मानी सुविधाएं, जिस्मानी सुख, जिस्मानी साधन जुटाने में सहयोग करते हैं। वो यदि पढ़ाई करते हैं गरीबों को, स्लम एरिया में जा करके गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब कन्याओं को पढ़ाते हैं, जो भी सुविधाएं देते हैं वो सब क्या करते हैं, जिस्मानी। युद्ध में मरने वालों को बचाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं जुटाते हैं, मतलब जो भी करते हैं वो सब क्या करते हैं, जिस्मानी सोशल वर्कर्स, जिस्मानी सेवाएं करते हैं। और तुम रूहों को समझाते हो, पड़ती रूह है, मनुष्य समझते हैं जिस्म पड़ता है, ये किसी को भी पता नहीं। कितनी कमाल की बात है कि ये बात किसी को भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता, बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, जैसे सत्युग में राजधानी चली थी, जैसे सत्युग में राजधानी चली थी वैसे ही आकर हम फिर से राजधानी में राज्य करेंगे, वैसे ही शुरू हो जाएगी, इसमें कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। याद में नहीं रहेंगे, याद में रहने का मतलब बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, नहीं तो एक भी विकर्म हुआ उसका बोझ 100 गुना हो जाएगा। एक गलती करेंगे और 100 गुना सजा मिलेगी, एक गलती भी आपके ऊपर बोझ बन जाएगी वो भी 100 गुना, जैसे कि आपने 100 गलतियां कर या एक गलती परंतु 100 गुना हो गई ना, तो उसका वजन तो 100 गुना हो गया जैसे कि 100 गलतियां। ये कब होता है, जब कोई शिव बाबा का बन जाए उसके बाद वो एक गलती करे तो उसका 100 गुना सजा बन जाती। तो जो भी मिले उसको पहले समझा दो, मेरे भाई शिव बाबा का मत बनना, बाहर आप एक गलती करोगे तो एक सजा मिलेगी, और शिव बाबा के बनोगे तो एक की 100 सजा मिलेगी, इसलिए अच्छा है कि तुम बाहर रहो, शिव बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो पड़ गए हैं, हम तो फंस गए हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं निकलने का, हम एक गलती करें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना सजा देता है, तो इससे अच्छा है कि हम तो फंस गए अब तुम मत फंस, ये सबको पहले समझा दो।
भाई जी,
हाँ जी,
दुख 100 गुना मिलता है तो फल भी तो 100 गुना मिलता है भाई जी।
भाई जी फल मिलता है वो ठीक है, हम करते हैं हमें मिलता है, परंतु ये कोई बात थोड़ा होती है, ये कोई नियम थोड़ा होता है कि गलती एक करें सजा 100 गुना मिले, वो तो 10 गलतियां होंगी तो लाख गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है। ऐसा कम से कम जो हम तो फंस गए, कोई बात नहीं, बाकियों को तो हम अलर्ट कर सकते हैं कि भाई सोच समझ के देख लो, हम तो फंस गए हैं, आप फंसना हो तो देख लो, हमें मत कहना बाद में। हाँ जी, देखो हर एक फंसे अपने 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 उससे फंसे, हमें तो ना शिकायत करे ना कि तूने पहले मुझे बताया क्यों नहीं, हम अपना फर्ज तो पूरा करें, हम उसको
बताए।
हाँ जी,
कैसे
थोड़ा सा तेज बोलो ताकि सबको समझ में आए, मेरे को भी समझ में आए।
भाई जी फिर प्रजा कैसे बनेगी सब ऐसे ही बता देंगे।
देखिए दुनिया के अंदर लूटने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां इसी प्रकार का काम करती हैं कि अपने जो रिश्तेदार हैं, मित्र संबंधी हैं, उनसे पैसे हमारे पास दो, हमारा सामान उनको दो, और फिर वो लुटते रहते हैं। और जिसमें उनको लालच देते हैं कि तुम्हारा फायदा है, जितना ज्यादा लोगों को बेचोगे सामान उतना आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा। वो अपने कमीशन के चक्कर में अपने परिवार के लोगों को, मित्र संबंधियों को, परिचितों को उस कंपनी के चक्कर में फंसा देते। अब हम अपने कमीशन के लालच में उनको फंसा दे रहे, सोच लो, बाकी आपकी मर्जी है। जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बता दिया। सबको अलर्ट कर दो भाई, सोच समझ करके आओ, आंखें खोल करके आओ। म्यूचुअल फंड के लिए भी छोटा सा बीच में दे देते हैं, इसके अंदर सोच समझ करके एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, वरना उन्होंने ऐसे ऐसे दस्तावेज बना के रखे हैं, उनको अपना फायदा है, बाकी दुनिया मरो कुछ भी। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, फायदा पाओ, दिखाते इतना इतना है, और उसके बाद नीचे छोटी सी लाइन लिख देते हैं जो समझ में ना आए। क्रेडिट कार्ड वाले ऐसे छोटी सी लाइन लिख देते हैं जो समझ में ना आए। ये जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं, मेडिक्लेम की या LIC की, इंश्योरेंस की, इन सब में छोटी लाइनों में और इतना बड़ा लंबा चौड़ा 30-40 पेज का बना के रखते हैं, और कौन पढ़े उनको, कितना पढ़े। उस समय उसको ये लगता है यार ये ले, साइन कर दे, ये बस साइन करवा लेते, उसके बाद वो स्टेट फायदा उन्हीं को है, हमें ही घाटा है हर प्रकार, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे जो भी हो, उनका फायदा हमें वो थोड़ा फायदा दे देते हैं, परंतु मैक्सिमम फायदा उन्हीं को ही, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमें खुद समझ कर, अच्छी तरह समझा कर देना चाहिए। हार्ड गुड एकदम टूट जाते हैं, उसमें भी मुख्य विकार है काम, जो सबसे ज्यादा काम विकार में जाने वालों के हड्डियां कीर्तन करना शुरू कर देते, कर कर हड्डियों में दर्द, हड्डियों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि विकार में एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं। और जो हमारी हड्डियों को वज्र बनाता है वीर्य, वही खत्म हो जाता है, तो हड्डियां एकदम कच्ची हो जाती। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता, अब ये कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे, तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, ये तो छोटा पाप है कि आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, वो तंग कर रहे थे, परंतु बस पावन होने के लिए तो बहुत सहज उपाय बताते हैं, तुम एक बाप की याद से पावन करो, सिर्फ एक बाबा का कहना मानोगे तो पावन। भगवान वास बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके, वे तो अपने को शरीर समझते हैं, वे तो अपने को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं, बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को समझाता हूँ, गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं, करनी है, ये तो पढ़ाई है, दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी, आगे चलकर अभी इतनी कशिश कोई की होती नहीं, क्योंकि याद नहीं करते हैं, मुसाफरी से जब लौटते हैं घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी, पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे, और तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है, शांति धाम घर जाएंगे फिर आएंगे। मतलब खुशी देखो हमें हमें क्या खुशी हो रही है भाई परम धाम जाने की, हमें परम धाम जाने की खुशी है या बाप सम्मान बनने की खुशी। परम धाम तो हमारे लिए विश्राम करने की जगह है, बस वहाँ हम जाएंगे कुछ समय के लिए अपने पाठ के अनुसार रुकना होगा बस, और कोई परम धाम में नहीं। वैसे घर में भी जाके हम क्या करते, खाना खाया और सो गए, फिर सवेरे उठे चले आए अपनी नौकरी पर, बस ये घर है। घर में जितनी देर रहते हैं उतने पता भी नहीं होता कि हम घर में हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं रात को 10 बजे घर में घुसा, बेड पर सो गया, 3 बजे उठा और यहाँ आ गया। जितनी देर मैं सोया मेरे लिए, चाहे मैं यहाँ सो तो चाहे मैं कहीं और सो, चाहे मैं सड़क पर सो, सोना है, घर तो सिर्फ सोना है, वहां तो कुछ करना ही नहीं है। रात को जाओ सो जाओ और फिर टाइम पर उठो यहाँ आ जाओ, हो गया जी कहाँ गए परम धाम। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं, जैसे मच्छरों का झुंड, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ पावन बनने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है, बाबा गरीब निवास है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता, अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े, नई दुनिया में नई दिल्ली वे सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा, तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करते, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की। ये थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनने लग पड़े, तुम वहां जाएंगे ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए मकान बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा आएगा उससे पहले माँ बाप को चिंता होती है कि हम उसके लिए मकान बना दें, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहां पार्ट है तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, ऐसे कल्प पहले बनाया था, वे बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, तुम समझते हो, हम आते हैं नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, वे भी ड्रामा में नूंद, वे भी ड्रामा में नूंद हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस डायल पर रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या, उनका तो सेकंड में आना और जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वो है ना परम धाम परम अवस्था, सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा, जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूँ, मैं इस पिंजरे में बैठ जाऊँ फंस जाऊँ तो मैं तो इस तोते इस पिंजरे में फंस जाऊंगा, मैं तो ये लोन लेता हूँ, आया पाठ बजाया और गया। तुमको समझाने के लिए तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वे खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? बैल कौन है और दो सवारियां कौन है?
ब्रह्मा बाबा बैल है।
ब्रह्मा बाबा बैल नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो उसमें सवार है ना, वो भी तो रथी है ना। हाँ जी, नहीं भाई ना, ये शरीर है बैल, आत्मा बैल थोड़ा होता
है।
हाँ, ब्रह्मा बाबा का तन है बैल, जिस पर दो सवार है। हाँ जी, दो आत्माएं है ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी और शिव बाबा की आत्मा भी। बाकी उस शरीर का जो मालिक है वो ब्रह्मा है, वो शरीर शिव बाबा का नहीं। ये जो मालिक है उसका भी तो कहेंगे ना, क्योंकि मेरा घर, घर मेरा है तो मैं उसका मालिक हूं ना, तो उसमें किराएदार शिव बाबा आ गया। तो एक मालिक भी रहता है तो एक किराएदार भी रहता है, पर तो बैल किसको कहा जाएगा, घर किसको कहा जाएगा? शरीर को रथ कहा जाएगा, शरीर है रथ, आत्मा है रथी, तो ब्रह्मा का रथ है, तो ब्रह्मा का, ब्रह्मा उस रथ का मालिक है, क्योंकि उसने उस रथ को बनाया, इसलिए बैल कहा जाता है रथ को। और जब बैल पर दो सवार करेंगे तो दो सवारी करेंगे, रहने वाले तो दो हो गए ना, एक मालिक भी और एक किराएदार भी, तो इसलिए आत्मा को बैल नहीं कहा जाएगा, शरीर को बैल कहा जाएगा। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितना तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे, मतलब मनुष्यों ने, आप उस समय तो बाबा ने कह दिया, अब तो आवाज से भी तीखे, हमारे संकल्प की स्पीड के हिसाब से, मतलब इतने तीखे हैं कि उसे चकमा देने के लिए, जैसे समझ सकते हैं कि रॉकेट ही थे जो भेजे गए थे, आप उसके लिए सुपरसोनिक रॉकेट और ये रॉकेट जो पाकिस्तान में भेजे गए, उनको पहले बुद्धू बनाया, मतलब ऐसे नकली जो है ना, बिना मनुष्य के जो है ना जहाज भेजे, और उनको लगा अच्छा अटैक कर दिया, तो उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम से उनको, उनके अंदर वो बिजी हो गए और टाइम की इतनी एक्यूरेसी रखी, क्योंकि वो नीचे हैं, वो नीचे हैं, वो उनको जल्दी दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, और ऊपर से इसी बीच में वो बिजी हो गए उनको खत्म करने में, और ये इतने में ऊपर से ही वो गए और अपना काम कर दिया 20 मिनट के अंदर या 24 मिनट के अंदर या 21 मिनट के अंदर। तो मतलब कहने का यह है कि वो इतने फास्ट थे कि वो उनके रडार में आए होंगे, परंतु वो इतनी ऊंचाई से गए कि वो उधर सोच भी नहीं सके, यानी कि रडार में उनके दिखाई नहीं दिए होंगे, दिखाई तो दिए होंगे, परंतु जब तक उनको समझ में आए वो तब तक अपना काम कर चुके। ये जो धीरे वाले थे इनको धीरे धीरे भेजा, स्लो स्पीड से भेजा, और उनको समझ में आ गया अच्छा वहां से आ रहा है आने से, और उन्होंने अपना भी चलाया, वो खिलौनों को खत्म करने में बिजी हो गए, और इसी बीच में ये सारा काम कर दिया। पास मतलब बहुत तेज स्पीड से जाते हैं, तब तक उनको समझ में आता तब तक तो काम हो गया। आवाज से भी सीखी, आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती है, भागती कैसे है, कैसे भागती उसको बता रहे हैं, यहां से झट लंदन, यहां से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गई। बाबा खुद भी रॉकेट है, کہتے میں تم کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں پھر جاتا ہوں اپنے گھر. اس سمے بہت بزی رہتا ہوں, دیوے درشٹی داتا ہوں تو بھکتوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے. بھکتوں کو بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ راضی کرنا ہوتا ہے. تم کو پڑھاتا ہوں, بھکتوں کی دل ہوتی ہے ساکشاتکار ہو یا کچھ نہ کچھ بھیک مانگتے ہیں. سب سے جاتی بھیک جگت امبا سے مانگتے ہیں. تم جگت امبا ہو, تم بیشو کی بادشاہی کی بھیک دیتی ہو. غریبوں کو بھیک ملتی ہے نا, ہم بھی غریب ہیں تو شیو بابا سورگ کی بادشاہی بھیک میں دیتے ہیں. بھیک کچھ اور نہیں, صرف کہتے ہیں باپ کو یاد کرو تو وکرم وناش شانتی دھام میں چلے جائیں گے. مجھے یاد کرو تو میں گارنٹی کرتا ہوں تمہاری آیو بھی بڑی ہو جائے گی. ستیوگ میں مرتیو کا نام نہیں ہوتا, وہ ہے امر لوگ, وہاں مرتیو کا نام نہیں ہوتا. صرف ایک کھال چھوڑ دوسری لیتے ہیں, اس کو کہا اس کو مرتیو کہیں گے کیا؟ ایک کھال چھوڑی, ایک شریر چھوڑا اور دوسرا شریر لے لیا, وہ ہے امر پوری. ساکشاتکار ہوتا ہے, ہم کو بچہ بننا ہے, خوشی کی بات ہے. بابا کی دل ہوتی ہے اب جا کر بچہ بن, جانتے ہیں گولڈن سپون ان ماؤتھ ہوگا. ایک ہی سیٹ کی لدا باپ کا بچہ ہوں, باپ نے ایڈاپٹ کیا ہے, میں سکی لدھا بچہ ہوں. تو بابا کتنا پیار کرتے ہیں, ایک دم پرویش کر لیتے ہیں. یہ بھی کھیل ہے نا, کھیل میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. یہ بھی جانتے ہیں ضرور بہت بھاگیشالی رتھ ہوگا جس کے لیے گائن ہے جان ساگر, ان میں پرویش کر تم کو جان دیتے ہیں. تم بچوں کے لیے ایک ہی خوشی بہت ہے, بھگوان آ کر پڑھاتے ہیں, بھگوان سورگ کی راجائی ستاپن کرتے ہیں. ہم ان کے بچے ہیں تو پھر ہم نرک میں کیوں؟ یہ کسی کو بھی پتا نہیں, بدھی میں آتا نہیں. تم تو بھاگیشالی ہو جو وشو کا مالک بننے کے لیے پڑھتے ہو. ایسی پڑھائی پر کتنا اٹینشن دینا چاہیے. اچھا میٹھے میٹھے سکی لدھے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو نمستے نمستے نمستے. دھارنا کے لیے مکھیہ سار نمبر ایک, اسی ڈبل خوشی میں رہنا ہے کہ اب مسافری پوری ہو, یہ خوشی رہے. پہلے ہم اپنے گھر جائیں گے شانتی دھام میں, پھر اپنی راجدھانی میں آئیں گے. سر پر جو جنم جنمانتر کے پاپوں کا بوجھا ہے اسے بھسم کرنا, دیہ ابھیمان میں آ کر کوئی بھی وکرم نہیں کرنا, کوئی بھی پاپ کرم نہیں کرنا, کوئی غلطی نہیں کرنی جو بابا کی سری مت سے الگ چلتا چلے جا. وردا شریش سنکلپوں کے سہیوگ دوارا سرو میں شکتی بھرنے والے شکتی شالی آتما ہو. سدا شکتی شالی بھاو کا وردان پراپت کر سرو آتماؤں کے سنکلپوں دوارا بل بھرنے کی سیوا کرو. جیسے آج کل سوریہ کی شکتی جمع کر کے کوئی کاریہ سفل کرتے ہیں, ایسے شریش سنکلپوں کی شکتی اتنی جمع ہو جو اوروں کے سنکلپوں میں بل بھر دے. یہ سنکلپ انجیکشن کا کام کرتے ہیں, اس سے اندر وریتی میں شکتی آ جاتی ہے. تو اب شریش بھاونا و شریش سنکلپ سے پریورتن کر اس سیوا کی آوشیکتا ہے. سلوگن, ماسٹر دکھ ہرتا बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं करता, फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वो कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, ये भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। अच्छा
हाँ जी, अगर संकल्प आए तो उस टाइम क्या करना चाहिए?
बिंदी रुक जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास बाबा ने इतने सारे विचार दे रखे हैं, इतने सारे काम दे रखे हैं, वही पूरे नहीं हो रहे, तू कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया भाई? बाबा ने इतने काम दे रखे उनको पूरा कर नहीं पा रहा, और तुम बीच में आकर के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। रुको, गुस्सा करो उसके ऊपर, तो जा भाग गए, कोई व्यक्ति आ जाए काम करने के लिए उसको भगाना पड़ेगा ना, हमारे काम का टाइम है और तू बीच में आकर के हमारा टाइम खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है मेरे। बाबा कहते उसके लिए गुस्सा करो, अपने आप को डांट लगाओ, फटकार लगाओ। बाबा तरीके तो सारे बताता है, हम याद नहीं रखते, सिर्फ गलती हमारी यही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नंबर ओम